चौथा स्कंद 21वां अध्याय महाराज पृथु द्वारा उपदेश। राजोवाच सभ्य श्रृणुत भद्रं वह साधवो य इहागताः सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्मम् आवेद्यं स्वमनीषितम्। और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, राजा पृथु ने कहा, हे सभासदों, तुम्हारा कल्याण हो। जितने भी महापुरुष इस सभा में उपस्थित हैं, वे मेरी प्रार्थना को ध्यान पूर्वक सुने। जो भी व्यक्ति वास्तव में कुछ जानने का इच्छुक हो, वह भद्र पुरुषों की इस सभा के समक्ष अपना निश्चय प्रस्तुत करे। तात्पर्य, प्रस्तुत श्लोक में साधव समस्त महापुरुष शब्द अत्यंत महावपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति महान एवं विख्यात होता है तो अनेक असज्जन उसके शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि भौतिकवादियों का स्वभाव ईर्ष्या करना है। किसी भी सभा में कई प्रकार के लोग रहते हैं, अतः महाराज पृथु की सभा में भी अनेक शत्रु उपस्थित रहे होंगे, भले ही वे अपने आप को व्यक्त न कर सकें। किंतु महाराज पृथु को ऐसे लोगों की चिंता थी जो भद्र थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने समस्त भद्र पुरुषों को संबोधित किया। उन्होंने ईर्ष्यालु व्यक्तियों की परवाह नहीं की। फिर भी उन्होंने अपने को राजा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि वे ऋषियों तथा साधु पुरुषों की सभा के समक्ष अत्यंत विनीत भाव से अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रहे थे। सम्राट होने के कारण वे उन्हें आज्ञा दे सकते थे, किंतु वे इतने विनीत तथा ईमानदार थे कि उन्होंने अपने प्रौढ़ निश्चय को स्पष्ट करने के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया। इस जगत का प्रत्येक प्राणी गुणों से बद्ध होने के कारण चार अवगुणों से युक्त रहता है। यद्यपि पृथु महाराज इन सब से ऊपर थे, तो भी उन्होंने सामान्य बद्ध जीव के समान अपने विचार यहाँ पर उपस्थित ऋषियों मुनियों तथा महापुरुषों के समक्ष रखा। अनुवाद दोहराइएगा। कृष्णा, महाराज पृथु द्वारा उपदेश। इस अध्याय में हम ये पढ़ रहे हैं कि पृथु महाराज एक विशाल यज्ञ संपन्न करने के इच्छुक थे, और इस अवसर पर जब वो वहां पर आए तो उस सभा में जगह जगह से ऋषि मुनि महापुरुष राजा महाराजा सब आए थे वहां। हालांकि पृथु महाराज सारे पृथ्वी के राजा थे, फिर भी वो इस सभा में बहुत ही विनीत रूप से अपने आप को प्रस्तुत किए। उन्होंने ऐसे कोई रूप स्वीकार नहीं किया कि मैं कोई बड़ा राजा हूं महाराजा हूं, इसलिए मैं जो आदेश दूंगा वो आप सबको पालन करना चाहिए। वैसे अधिकार तो उनका था, अगर चाहते तो कह सकते थे इस तरह से, लेकिन महाराज पृथु भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार होने के अलावा वो एक महान वैष्णव भी थे, इसलिए उन्होंने नम्र स्थान को स्वीकार किया। सबके सामने ऐसे हाथ जोड़कर प्रांजलि मुद्रा में खड़े हुए और कहने लगे कि हे सभासदों, हे सज्जनों और देवियां, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, मैं आपके सामने थोड़े प्रस्ताव रखना चाहता हूं, तो कृपा करके आपके विचार भी व्यक्त कीजिए। यह है तरीका कोई निर्णय लेने के लिए, भले कोई राजा हो या रंक हो। बताया जाता है कि जब भी हमारे जीवन में बड़े निर्णय लेने होते हैं या छोटे निर्णय भी लेने होते हैं, दूसरों के मत को सुनना यह कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम तो यहां संसार के बद्ध जीव हैं, चार त्रुटियां हमारे अंदर हैं, तो इन त्रुटियों की वजह से यह हो सकता है कि जो निर्णय हम लेंगे वो गलत हो। इसलिए यह पद्धति बताई जाती है कि हम हमेशा महापुरुषों के संग में आकर ऐसी सभा में हमारे विचारों को व्यक्त करें और उनके राय भी हम स्वीकार करें, ताकि शायद अगर हम गलत रास्ते पर जा रहे हों, गलत निर्णय ले रहे हों, तो उसको ठीक करके हम सही मार्ग में चल सकें। राजा पृथु हमें दिखा रहे हैं कि किस तरह से कितने भी बड़े पद पे हम क्यों ना हो, फिर भी हमें दूसरों के सामने बड़े नम्र रूप से पेश आना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं, समाज में ऐसा हूं वैसा हूं, इसलिए मुझे दूसरों को पूछने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सब कुछ मालूम है, आखिर ये पद जो मुझे मिला है, और दूसरे लोगों को मेरा अधिकार स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मैं ऊंचे पद में हूं, वो निम्न श्रेणी के पद में है, उनका काम है सुनना, मेरा काम है बोलना, इसलिए मैं जो बोलता हूं वही सभी को करना चाहिए, और क्योंकि मैं इस पद में हूं तो मेरा निर्णय हमेशा सही रहेगा। नहीं, भगवान के शक्तावेश अवतार होने के बावजूद, परमहंस वैष्णव होने के बावजूद, सारे पृथ्वी के राजा होने के बावजूद, महाराज पृथु ने कभी ऐसा नहीं सोचा, अपने आप को ऐसे नम्र रूप से पेश किया सबके सामने और हाथ जोड़कर सबको कहने लगे कि मैं मेरे विचार व्यक्त करूंगा, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, आप मुझे समझाइए, आप बताइए। तो यह तरीका होता है। हालांकि प्रभुपाद जी ने यह प्रजातंत्र की प्रणाली की कड़ी निंदा की थी, डेमोक्रेसी, फिर भी वो चाहते थे कि हमारे भक्त समाज अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को चलाने के लिए भी, हालांकि अधिकारी व्यक्ति भी होते हैं, फिर भी ज्यादा से ज्यादा जो है सबको साथ में मिलकर निर्णय लेने चाहिए, अलग अलग तरह के। हालांकि अंत में निर्णय लेने वाले अधिकारी व्यक्ति तो रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये सबकी संस्था है, ये भक्ति मार्ग सभी के लिए है, तो सभी को साथ में लेकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अधिकारी व्यक्ति कहे कि मैं इस पद पर हूं तो मैं जो कहूं वो सही है। ऐसा नहीं कि हम कहें कि अभी क्योंकि मुझे पद मिला है तो सभी को मेरी बात सुननी ही चाहिए, नहीं सुनेंगे तो, ऐसा नहीं। और देखिए, शास्त्रों में हम देखते हैं जगह जगह ऐसे ही उदाहरण हैं कि दूसरे राजाओं की बात तो दूर है, साक्षात भगवान ने भी ऐसे किया। एक बार ऐसे हुआ कि द्वारका में जब भगवान श्री कृष्ण अपने सभा में बैठे थे, विराजे थे अपने सारे मंत्रियों के संग, अपने यदुकुल के सदस्यों के संग में, राजा उग्रसेन थे और अन्य सारे वरिष्ठ और बुजुर्ग भी वहां उपस्थित थे, तो वहां पे एक ब्राह्मण आए और वो ब्राह्मण ने आकर एक संदेश दिया, और वो संदेश किनसे था? वो संदेश था 20,000 राजाओं का, और ये ब्राह्मण जो है ये उनका दूत था, उनका दूत बनकर उनकी ओर से एक संदेश देने आया था भगवान श्री कृष्ण को, और क्या था वो संदेश? वो संदेश था कि हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप परम भगवान हैं, आप ही सृष्टि करता हैं, सभी कुछ आप ही करते हैं, सर्वशक्तिमान आप ही हैं। हम क्षुद्र राजाएं हैं 20,000, लेकिन ये जरासंध राजा, जो मगध राजा है, उसने हमें हरा कर कैदी कर दिया है। जरासंध जब इधर उधर घूम रहा था तो हम सब ने हमारा सर उसके सामने नहीं झुकाया, इसलिए हमें बंदी कर दिया राजा जरासंध ने, और हमें अभी कैदी अवस्था में बहुत अपमान सहन करना पड़ रहा है। तो हम जानते हैं कि शायद हमारे पिछले जन्मों के पाप हैं जिसकी वजह से हमें ये अवस्था देखनी, परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। तो आपसे हम ये प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके इस विडंबना से आप हमें दूर कीजिए, किसी न किसी तरह से इस बुरी परिस्थिति से हमें मुक्ति दिलाइए। अभी हमने हमारी सारी बातें आपके सामने रख दी हैं और जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं, क्योंकि आप सर्वसमर्थ हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आपने 18 बार जरासंध को के साथ युद्ध किया, 17 बार उसको अच्छी तरह से हरा दिया और 18वें बार आप आसानी से हरा सकते थे उसे, लेकिन फिर भी आपने एक साधारण मनुष्य की तरह लीला की। आप रणभूमि को छोड़कर चले गए और वो मूर्ख जरासंध सोचने लगा कि वास्तव में आप डर के मारे भाग गए हैं, और उसने सोचा कि मैं अभी जीत गया हूं, मैंने कृष्ण को हरा दिया है। लेकिन वो नहीं जानता था कि वास्तव में आप केवल मनुष्य लीला प्रकट कर रहे थे, आपका कोई और उद्देश्य था, इसलिए आप वहां से निकल पड़े। तो हम तो आपकी शक्ति जानते हैं, हम जरासंध की तरह नहीं हैं, हम आपके शरण लेना चाहते हैं, इसलिए आपका आश्रय हमें कृपा करके दीजिए और हमें आके यहां से बचाइए। तो जब दूत ने ऐसे कहा तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, हम इसके बारे में कुछ करेंगे। तो उस समय हमारा भगवान श्री कृष्ण ने ये दूत का प्रस्ताव सारे सभा के सामने रखा कि हे सभा के सदस्यों, अब ये मुझे बताइए, मार्गदर्शन कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे आक्रमण करना चाहिए, क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि देखो मैं भगवान हूं, अब मुझे तुम लोग क्या बताओगे, अंदर से तुम लोगों को मैं ही तो ज्ञान दे रहा हूं, भगवत गीता में मैंने उपदेश अभी देना है आगे चल के कि वैसे ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि मैं सबके हृदय में बैठा हूं। नहीं, भगवान ने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे जरासंध को हराना चाहिए। तो ठीक उसी समय नारद मुनि वहां पर आए, नारायण नारायण करके, और उनके बाल जो है, उनके केश बिल्कुल स्वर्ण रंग के लग रहे थे, चमक रहे थे तेज से, दिव्य तेज की वजह से। और जैसे आप जानते हैं, नारद मुनि कोई महालक्ष्मी एक्सप्रेस गाड़ी से या तो फिर कोई हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट बस से नहीं आते या गाड़ी से नहीं आते, वो तो आकाश पथ से आते हैं। तो सीधे आकाश पथ से आए, सीधे सुधर्म सभा में आए, क्योंकि महाराज भगवान श्री कृष्ण के सभा गृह को सुधर्म कहते हैं, जो कि विश्वकर्म ने इसकी रचना की थी। तो सुधर्म सभा में आए नारद मुनि, और सभी ने उनका आदर सत्कार किया, भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया बड़े आदर से। और फिर जब ये आदर सत्कार हो गया था तो फिर उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने पूछा नारद मुनि से कि हे महात्मा, हे नारद जी, आपने हमारा कल्याण करने के लिए यहां आने का विचार किया अवश्य, नहीं तो हम जैसे साधारण क्षत्रियों के लिए और क्या उपाय है। अभी आप यहां आए हैं तो कृपा, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तीनों त्रिभुवन में आप भ्रमण करते हैं, स्वर्ग लोक, भूलोक, भुवर लोक, आप सब कुछ जानते हैं, कोई भी बात इस संसार में आपसे छुपी नहीं रहती, और आप भगवान विष्णु के महान भक्त होने के नाते कोई भी जगह आपके लिए बंद नहीं है, जहां चाहे वहां आप जा सकते हैं। तो कृपा करके ये हमें बताइए कि हस्तिनापुर में हमारे भाई पांडव
वो सब कैसे हैं, सब कुछ कुशल मंगल है ना उनके साथ में, कैसे चल रहा है, युधिष्ठिर कैसे हैं, अर्जुन कैसे हैं, वहां कुंती देवी कैसी हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि जिस सृष्टि की बात कर रहे हैं, त्रिभुवन की बात कर रहे हैं आप, इस त्रिभुवन और इस सृष्टि को बनाने वाले तो आप ही हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताऊं। वास्तव में युधिष्ठिर महाराज अभी राजसूय यज्ञ करने के संपन्न करने के इच्छुक हैं, केवल आपको प्रसन्न करने के लिए और आपका धर्म जो है उसको फैलाने के लिए, केवल इस हेतु युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करना चाह रहे हैं और इसमें वो आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद और आपकी उपस्थिति चाहते हैं। तो कृपा करके हस्तिनापुर में आइए और युधिष्ठिर महाराज के ऊपर कृपा बरसाइए। तो इस तरह से नारद मुनि ने थोड़े बहुत उपदेश दिया और फिर वो आकाश पथ से होकर अपनी जगह चले गए भ्रमण करते करते, क्योंकि नारद मुनि कोई एक जगह में लंबे समय के लिए रहते नहीं है। तो उस समय अभी कृष्ण भगवान बड़े दुविधा में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा सबके सामने, तो कोई लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं हमें राजसूय यज्ञ की बात क्या है, वहां बेचारे 20,000 राजा जो हैं वो कैदी पड़े हैं, वो बड़े कष्ट में है, कठिनाई में है, उनको बचाना क्षत्रिय का पहला काम होता है, क्षत्रायते, जो कठिनाई में है उनका रक्षण करना। और कई कहने लगे कि नहीं, जब महाराज युधिष्ठिर आपका संग चाहते हैं और वैसे नारद मुनि जैसे महाभागवत संत ऋषि आए हैं और वो आपको कह रहे हैं कि आपको जाके महाराज युधिष्ठिर का साथ देना चाहिए, तो ऐसे महाभागवत की इच्छा को ठुकरा सकते हैं आप, कैसे संभव है, इसलिए आपको पहले वहां जाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तो उनके नित्य भक्त हैं, नित्य पार्षद हैं उद्धव, तो उन्होंने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, आप तो बड़े चतुर हैं, बड़े विद्वान हैं, आपकी विवेक बुद्धि बड़ी तेज है, आप हर एक परिस्थिति में क्या उचित है और क्या अनुचित है ये आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। अब मुझे बताइए कि अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें जरासंध के पास जाकर युद्ध करके उन 20,000 राजाओं को मुक्त करना चाहिए, या हमें हस्तिनापुर जाकर राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज का साथ देना चाहिए। तो उस समय उद्धव ने सोचकर कहा कि हे कृष्ण, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम भला आपको क्या बता सकते हैं कि ठीक क्या है, ठीक क्या नहीं है, उचित क्या है और अनुचित क्या है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो आपकी सेवा समझकर हम दो शब्द कहना चाहेंगे। वैसे देखा जाए तो नारद मुनि के वचनों को हम ठुकरा नहीं सकते, आखिर वो तो है महाभागवत, उनकी इच्छा जब उन्होंने व्यक्त की है तो भला हम उसके विरुद्ध कैसे जा सकते हैं। और वैसे भी युधिष्ठिर महाराज आपके प्रिय भक्त हैं और वो आपकी सेवा के लिए ही राजसूय यज्ञ करना चाह रहे हैं, तो युधिष्ठिर महाराज की इच्छा पूरी करना तो बहुत आवश्यक है। और उधर आपका धर्म भी है क्षत्रिय धर्म, कि आपको आपकी सहायता के लिए कोई व्यक्ति सामने आता है, आपका आश्रय लेता है, तो आप उनको ठुकरा नहीं सकते। और वैसे भी आप परम भगवान हैं और आपके जो आश्रय में आता है आप उनको त्याग नहीं सकते। तो मेरा मत ऐसा है कि दोनों कार्य हमें करने चाहिए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ संपन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि सारे पृथ्वी के राजाएं उनका प्रमुख स्थान, उनका प्रधानत्व स्वीकार करें। जब तक ऐसा कोई एक भी राजा होगा जो महाराज युधिष्ठिर का राज स्वीकार नहीं करेगा, तब तक राजसूय यज्ञ संपन्न नहीं हो पाएगा। और एक ही राजा है पृथ्वी में जो महाराज युधिष्ठिर को नहीं मानेगा और वो है जरासंध। तो हमें तो राजसूय यज्ञ करना ही है, लेकिन राजसूय यज्ञ करने के लिए भी जरासंध की हत्या जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं किया जा सकता। और वैसे भी 20,000 राजाओं को कैद खाने से छुटकारा दिलाने के लिए जरासंध का वध करना पड़ेगा, इसलिए मेरे ख्याल से सबसे पहले जरासंध का वध करना चाहिए। लेकिन जरासंध का वध कैसे किया जा सकता है, यह प्रश्न हमारे सामने आता है। अब जरासंध की शक्ति बड़ी विशाल है, 10,000 हाथियों की शक्ति है इस जरासंध में, और इतनी शक्ति केवल और एक ही व्यक्ति में है सारे संसार में, और वो है भीमसेन। तो आपको यह उचित रहेगा कि आप हस्तिनापुर पहले चले जाएं, राजसूय यज्ञ में साथ देने का आश्वासन वचन दे दें युधिष्ठिर महाराज को, और साथ में वहां से भीमसेन को ले जाएं, क्योंकि जब भीमसेन को आपका संग मिलेगा तो उसे प्रेरणा मिलेगी कि जरासंध को वो खत्म कर दे। आपकी कृपा जब होगी तो भीमसेन अवश्य रूप से वो विजय प्राप्त कर लेगा। इसलिए आप हस्तिनापुर जाकर महाराज युधिष्ठिर को प्रोत्साहन देकर भीमसेन को साथ में ले जाइए मगध देश में। आप ब्राह्मण के रूप में जाइए, क्योंकि जरासंध राजा जो है वो ब्राह्मणों के प्रति बड़े आदर भाव से देखता है, ब्राह्मणों को दान देता है, और आप ब्राह्मण का वेश पहनकर जाएंगे तो कभी भी आपके इच्छा को इनकार नहीं कर सकता। तो इसलिए आपके लिए उचित ये रहेगा कि पहले आप हस्तिनापुर चले जाएं और फिर मगध देश में जाकर उन राजाओं को कैद से मुक्त करके फिर आप राजसूय यज्ञ में आप शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बड़ी अच्छी सलाह दी उद्धव आपने। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं इस तरह से अपने पार्षदों से, अपने मंत्रियों से, साथियों से, भक्तों से हमेशा सलाह लेते थे। कभी वो ऐसा नहीं कहते थे कि मैं भगवान हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, या मैं राजा हूं, महाराजा हूं, मुझे सब कुछ मालूम है, किसी दूसरे की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, खुद भगवान ने अपने उदाहरण से सिखलाया। उधर जब पांडव 13 वर्ष के वनवास को समाप्त कर चुके थे, तो 13वां वर्ष जो है आपको मालूम है कि वो मत्स्य देश विराट राजा के शरण में रहे थे, और वहां अज्ञातवश रहे थे वेश बदलकर। और उस समय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह विराट राजा की कन्या उत्तरा से हुआ। बड़े धूमधाम से ये उत्सव मनाया गया और जगह जगह से लोगों को निमंत्रण दिया गया, और इस अनुष्ठान में, इस विवाह के अनुष्ठान में यदुकुल के भी सारे निवासी आए, कृष्ण भगवान और बलराम जी तो थे ही, साथ साथ में और कई आए, जैसे कि सांब, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये भी सब आए, सात्यकी, द्रुपद राजा, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र इत्यादि, ये सारे महान महान योद्धा सब वहां आए थे। तो जब विवाह का अनुष्ठान समाप्त हो गया तो ये सारे राजा एकत्र हुए और इधर उधर की बातें कर रहे थे, और फिर बाद में विषय निकला कि अभी 13 वर्ष समाप्त हो गए पांडवों के वनवास में, अभी युधिष्ठिर महाराज को आगे क्या करना चाहिए। अभी कृष्ण भगवान चाहे तो तुरंत कह सकते थे, अरे मैंने तो कौरवों को अभी भी नष्ट कर दिया है, अभी क्या करना, अभी क्या सलाह मशवरा करना, अभी तो ठीक है, आराम से हम आगे जा सकते हैं। नहीं, उन्होंने सारे क्षत्रियों की सभा में कहा कि हमने ये देखा है कि जो कौरव हैं उन्होंने हमेशा द्वेष भावना रखी पांडवों के प्रति, नाना प्रकार से उनको दुख दिया, कष्ट दिया, और उनसे धोखेबाजी की, इस तरह से जुआ खेला और धोखे से उनको उनके हाथों से अपना राज्य छीन लिया, और अभी भी दुर्योधन द्वेष भावना रखता है और इस राज्य को लौटाना नहीं चाहता है, तो इसके बारे में क्या किया जाए। मेरी राय तो ये है कि हमें अभी किसी दूत को भेजना चाहिए दुर्योधन के पास, धृतराष्ट्र महाराज के पास, और जो पांडवों का हक है, अधिकार है कि उन्हें यह आधा राज्य मिलना चाहिए, उसके लिए एक शांति का प्रस्ताव लेकर किसी को यहां से जाना चाहिए। यह मेरा मत है, आप सबका क्या मत है? देखिए, सबका मत पूछा उन्होंने, केवल ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं तो कर दो। तो इस तरह से वहां बलराम जी कहने लगे, हां, कृष्ण ने जो कहा है वो बहुत ठीक कहा है। वैसे देखा जाए तो दुर्योधन को बड़े खुशी से, हृदय से अपना आधा हिस्सा जो है राज्य का वो दे देना चाहिए। अभी वैसे युधिष्ठिर महाराज ने तो ये राज्य खो दिया, वैसे जुआ नहीं खेलना चाहिए था युधिष्ठिर महाराज को। वैसे युधिष्ठिर महाराज अच्छी तरह से जुआ खेल भी नहीं सकते, और इसलिए उनको खेलना नहीं चाहिए था और वो हार गए। तो इसमें शकुनी की कोई गलती नहीं है, अपनी गलती के लिए अभी पछताना पड़ा युधिष्ठिर महाराज को। तो इसलिए अभी इसमें और युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? तो हमें जाकर बड़ी नम्रता से दुर्योधन से निवेदन करना चाहिए कि अभी आधा हिस्सा जो है राज्य का वो पांडवों को दे दो। तो दुर्योधन, जब बलराम जी फिर से बैठ गए, अब सात्यकी राजा खड़े हो गए, कहने लगे कि जो भी बात व्यक्ति के हृदय में होती है वो जबान पर निकल जाती है। हे बलराम जी, हे हलधर, हे बलदेव, हम जानते हैं कि शुरू से ही आपके हृदय में दुर्योधन के प्रति बड़ा प्रेम रहा है। आप हमेशा पक्षपात करते हैं दुर्योधन का, क्योंकि वो आपका शिष्य रहा है। इसलिए आप दुर्योधन और उसके जो साथी है उनके तरह ऐसे मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं। हम क्या जरूरत है उसको ऐसे नम्रता से उसके आगे जाने की? क्या आपको याद नहीं है कि किस तरह से उन्होंने द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, किस तरह से धोखेबाजी करके युधिष्ठिर महाराज का राज्य छीनने का प्रयास किया? क्या द्वेष भावना दुर्योधन के हृदय में है? वो कभी भी शांति की बात स्वीकार नहीं करेगा। हमें किस बात के लिए डर है? हमारे पास अर्जुन है जिसके हाथों में गांडीव बाण है, हमारे पास भीमसेन है जिसके पास में गदा है, हमारे पास केशव है श्री कृष्ण जिनके उंगली में सुदर्शन चक्र चलता है और जो सारे सृष्टि का संहार कर सकता है, और हमारे पास इतने बड़े बड़े राजा योद्धा हैं, हमें किस बात के लिए डरना है? हमें तो इसी दिन जाकर दुर्योधन से छीन लेना चाहिए राज्य। तो उस समय द्रुपद राजा बोले, हां, सात्यकी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वास्तव में हमें राज दुर्योधन को राज्य आधा दे देना चाहिए, लेकिन मीठी बातों से कुछ होगा नहीं। सांप से सांप को मीठी बातें कहने से वश में नहीं किया जा सकता। सांप के लिए चाहिए कोई अस्त्र, अस्त्र से ही सांप को मार देना है तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसलिए दुर्योधन के हृदय में भी ईर्ष्या है, वो सांप की तरह है, कोई शांति के वचनों से वो शांत नहीं होने वाला। इसलिए हमें अभी एक दूत भेजना चाहिए, और दूत यह संदेश ले जाएगा कि वास्तव में हम शांति चाहते हैं, आप शांति से अगर राज्य लौटाना चाहते हैं तो कीजिए, वरना युद्ध होगा। तो कृष्ण भगवान ने आखिर में जो है पूरा फाइनल जो है सब, जब साफ सारे जो सभी ने अपना अपना विचार व्यक्त किए थे, तब कृष्ण भगवान ने आखिर में बोलने लगे। सबसे पहले उन्होंने विषय को निकाला, अपने विचार व्यक्त किए, और फिर सबको अपने अपने विचार कहने को कह दिया, और फिर अंत में जो इसका निष्कर्ष निचोड़ है वो निकालने आए, और कहने लगे कि आप सबका कहना सही है, इसलिए द्रुपद राजा आप इस सभा में सबसे वरिष्ठ हैं, सबसे बुजुर्ग हैं, इसलिए आप ही किसी एक दूत को भेजिए, और फिर वहां से जो दुर्योधन के सामने ऐसा प्रस्ताव रखिए शांति का, और फिर अगर वो मानता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानता है तो फिर उन्हें गांडीव बाण का क्रोध सहन, गांडीव बाण का जो प्रवाह है वो सहन करना पड़ेगा और मेरा क्रोध सहन करना पड़ेगा। अगर वो नहीं सुनते हैं तो हमें आप संदेश भेजिए, हम युद्ध के लिए आ जाएंगे। और इस दौरान जो युधिष्ठिर राजा के हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, सारे राजा, उनको भी संदेश भेजा जाए ताकि वो भी तैयार रहें युधिष्ठिर महाराज की सहायता करने के लिए। तो इस तरह से द्रुपद राजा ने फिर अपना एक दूत भेजा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बार बार भगवान श्री कृष्ण भी किस तरह से किसी समस्या का हल निकालते थे, सबको साथ में बुलाते थे, आपकी राय क्या है, आपकी राय क्या है, नम्रता से पेश आते थे और फिर जो भी निष्कर्ष निकलता था उसके अंत में अपनी बुद्धि लगाकर फिर एक अंतिम कोई निर्णय प्रस्तुत करते थे भगवान श्री कृष्ण। इस तरह से काम चलना चाहिए। हालांकि उस समय प्रजातंत्र नहीं था, राजा था, राजा जो कहता था वो होना था, ऐसा होता भी था। और राजा अगर चाहता तो सभी कुछ, सभी अपने मंत्रियों का विरोध करके भी निर्णय ले सकता था। लेकिन अक्सर ऐसे देखा जाता है कि जो राज ऋषि हुआ करते थे कभी ऐसा नहीं करते थे। जैसे कि दशरथ महाराज जब विश्वामित्र मुनि उनके पास आए थे और कहे कि हम आपसे आपका पुत्र चाहते हैं, राम और लक्ष्मण दोनों पुत्र हम चाहते हैं, क्योंकि हमें थोड़े राक्षस बड़े परेशान कर रहे हैं और इन राक्षसों का वध करने के लिए हमें राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है, इनकी शूर वीरता के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। तो उस समय राजा दशरथ को के हृदय पे बड़ा धक्का पहुंच गया। उन्होंने कहा कि मैं आपको मेरी सारी सेना भेजूंगा, सेना के बाद दूर मैं खुद आऊंगा आपके साथ में, लेकिन केवल इन दो बालकों को मत ले जाइए, इनके 15-16 साल भी अभी तक नहीं हुए और ये बड़े कोमल नाजुक हैं, भला ये बड़े बड़े राक्षसों का वध क्या करेंगे, मैं खुद आऊंगा आपके साथ में। तो उस समय विश्वामित्र मुनि ने कहा कि आपने वचन दिया है कि मैं जो भी मांगूंगा आप वो देंगे, अभी आप अगर नहीं देंगे तो ये धर्म का उल्लंघन होगा, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो बार बार इनकार करते रहे। और उस समय वशिष्ठ मुनि जो कि कुल गुरु थे दशरथ महाराज के, तो उन्होंने कहा कि विश्वामित्र मुनि को वास्तव में आप क्षत्रियों की आवश्यकता नहीं है, वो अपने ब्रह्म तेज से ही इन सारे राक्षसों का वध कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये नियम नहीं है, जो पद्धति है सही प्रामाणिक ढंग होता है कि क्षत्रियों को ही ब्राह्मणों को रक्षा करनी चाहिए और राक्षसों का वध करना चाहिए, तो इसलिए वो आपके पास आए हैं। और दूसरी बात, वो श्री राम और श्री लक्ष्मण का यश फैलाना चाहते हैं त्रिभुवन में, सारे संसार भर में, इसलिए उनको ले जाना चाहते हैं। तो राम और लक्ष्मण की सुरक्षा के लिए आप घबराइए नहीं, इनका कुछ नहीं होने वाला, वो अपने आप में ही तो पूरी तरह से समर्थ है ही, साथ साथ में विश्वामित्र मुनि भी पूरी तरह से समर्थ है इनकी रक्षा करने के लिए, तो आप बिल्कुल घबराइए मत, इनको भेज दीजिए। तो दशरथ महाराज ने बहुत अच्छी तरह से निष्ठा से ठान लिया था कि मैं नहीं भेजूंगा भले कुछ भी हो जाए मुझे, क्योंकि उनके हृदय में राम और लक्ष्मण के प्रति इतना प्रेम था, स्नेह था, कि कभी उनको उनके मन में ये विचार जब आया कि इनकी शायद हत्या हो सकती है तो वो सहन नहीं कर पाए। तो धर्म का उल्लंघन करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन फिर भी जब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि नहीं आपको भेजना चाहिए, तो उन्होंने बात मान ली। तो देखिए, बड़े बड़े राजा महाराजा भी इस तरह से सभा में जो उनके ऋषि मुनि ब्राह्मण इत्यादि कहते थे वो मान लेते थे, कर लेते थे। तो इस तरह से ये है पद्धति। पृथु महाराज भी इसी तरह से सारी सभा के सामने पेश आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हे सभासदों, अभी आप सब भी अपने अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, मैं भी मेरे विचार व्यक्त करूंगा। इस तरह से अपने अधिकार को जमाने का, हक जमाने का प्रयास कभी नहीं किया। तो इस तरह से अगर वातावरण रहे, हरे किसी न किसी भी पद में हो रहने वाला व्यक्ति अगर ऐसे सोचे और ऐसे नम्र अवस्था में रहे और सबको साथ में लेकर चले, तो सारा संसार कितना अच्छा रहेगा। तो उस समय राजतंत्र होने के बावजूद अंदर अपने सभा में एक प्रजातंत्र की वातावरण होती हुआ करती थी, लेकिन यहां हम देखते हैं कि प्रजातंत्र तो है लेकिन सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। जो राजा है, जो नेता है, वो तो प्रजा का देखभाल नहीं करते, जो अपने मन में है वो कर लेते हैं केवल मत के लिए, वोट के लिए, प्रजा की भलाई नहीं सोचते हैं। तो इस तरह से पृथु महाराज भी ऐसे उदाहरण पेश कर रहे हैं हम सबके सामने कि हमारा बर्ताव कैसे होना चाहिए। स्वयं जब श्री कृष्ण ही ऐसे बर्ताव करके दिखाया तो हमें भी तो ऐसे करना चाहिए। अपने अपने जगह में हमें, हम सब का कोई ना कोई पद है, शायद हम परिवार के देखभाल करने वाले हो, हमारे व्यवसाय में, हमारे घर में, समाज में, मंदिर में, किसी हमें हमारी अलग अलग जिम्मेदारियां रहती हैं, पद रहता है, तो इनको निभाना है तो इसी तरह से निभाना चाहिए। अहंकार से स्थित होकर नहीं, नम्रता से, जिम्मेदारी की भावना से, तब सब कुछ कुशल मंगल रहेगा, अच्छी तरह से सब कुछ चल पाएगा। इसी तरह से हमारे मंदिर, हमारे भक्त समाज में भी आगे कार्य संभालने के लिए, चाल चलाने के लिए ऐसे ही भावना हम सबकी होनी चाहिए। फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते करते और भगवान की सेवा करते करते हम सब सुखी रह सकते हैं और भक्ति में प्रगति एक साथ में अच्छी